एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक डायरी नहीं है, ये इतिहास के एक बहुत ही मुश्किल दौर में इंसान के जज्बे, उसकी उम्मीद, उसकी हिम्मत की कहानी है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इसे लिखा है एनी फ्रैंक ने। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि इतिहास का एक जरूरी दस्तावेज है।
बिल्कुल सही कहा। एनी फ्रैंक एक आम सी यहूदी लड़की थी, लेकिन नाजी जर्मनी के जुल्म ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। उन्हें अपने परिवार के साथ छुपना पड़ा और उनकी कहानी खास इसलिए बन जाती है क्योंकि ये दिखाती है कि कितने भी भयानक हालात क्यों न हो, इंसान अपनी इंसानियत, अपनी जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा और अपनी पॉजिटिव सोच वो बनाए रख सकता है।
हाँ, और वो कोई प्रोफेशनल राइटर तो थी नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उनके जो अनुभव थे, जो उन्होंने खुद झेला और जिस कमाल की खूबी से उन्होंने लिखा, वो हमें उस दौर की सच्चाई के बहुत करीब ले जाता है।
सही बात है, उनकी डायरी होलोकॉस्ट के लाखों पीड़ितों को एक चेहरा देती है, एक आवाज देती है, उन लाखों लोगों को जिन्हें खामोश कर दिया गया था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई, जब आपका वजूद ही खतरे में हो, तब आप अपनी पहचान, अपनी इज्जत, अपनी उम्मीद, इसे कैसे बचाए रख सकते हैं। तो चलिए, आज एनी फ्रैंक की जीवन की इस दिल को छूने वाली कहानी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एनी के शुरुआती सालों से। उनका जन्म कहाँ और कब हुआ?
एनी फ्रैंक, पूरा नाम एनालीज मैरी फ्रैंक, का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। परिवार में उनके पिता थे ऑटो फ्रैंक, माँ एडिथ फ्रैंक और एक बड़ी बहन मार्गोट।
एक सामान्य मिडिल क्लास यहूदी परिवार।
जी, लेकिन दिक्कतें शुरू ही 1933 में, जब जर्मनी में नाजी पार्टी पावर में आई। यहूदियों के लिए माहौल बहुत तेजी से बिगड़ने लगा, नए नए कानून बनने लगे उनके खिलाफ, हिंसा होने लगी।
तो परिवार ने क्या किया?
उनके पिता ऑटो फ्रैंक काफी दूर की सोचने वाले थे, उन्होंने खतरे को भांप लिया और 1934 में ही वो अपने पूरे परिवार को लेकर एम्स्टर्डम चले गए, नीदरलैंड्स में। उन्हें लगा शायद वहां वो लोग ज्यादा सुरक्षित रहेंगे।
और एम्स्टर्डम में जिंदगी कुछ ठीक चल रही थी, मतलब स्कूल, दोस्त?
हाँ, काफी हद तक। एनी स्कूल जा रही थीं, दोस्त बना रही थीं, एक आम टीनेजर की तरह। लेकिन फिर आया उनका 13वां जन्मदिन, 12 जून 1942।
और इस दिन कुछ खास हुआ था।
जी, उन्हें एक तोहफा मिला, एक लाल और सफेद चेक्स वाली डायरी। असल में वो एक ऑटोग्राफ बुक थी, पर एनी ने उसे अपनी डायरी बना लिया और उसका नाम रखा किटी।
किटी?
हाँ, ये सिर्फ एक डायरी नहीं रही उनके लिए, ये उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई, एक ऐसी दोस्त जिससे वो अपने सारे सीक्रेट्स, अपने डर, अपने सपने, सब कुछ शेयर कर सकती थी बिना किसी झिझक के।
तो शुरू में वो क्या लिखती थी अपनी डायरी में?
बिल्कुल एक टीनेजर की तरह, अपनी सहेलियों के बारे में, स्कूल की बातें, थोड़ी बहुत शरारतें। उनकी शुरुआती एंट्रीज पढ़े तो एक बहुत ही चुलबुली, बातूनी और जिंदा दिल लड़की की इमेज बनती है।
लेकिन ये सब बदलने वाला था।
हाँ, बहुत जल्दी। विडम्बना देखिए, ये डायरी उन्हें ठीक उस समय मिली जब उनकी बाहरी दुनिया एकदम सिकुड़ने वाली थी, और किटी, किटी उनकी अंदर की दुनिया की आवाज बनने वाली थी।
तो ये बदलाव कैसे आया? वो क्या हुआ जुलाई 1942 में जिसने सब कुछ बदल दिया?
जुलाई 1942 में एनी की बड़ी बहन मार्गोट, उनको नाजी अधिकारियों से एक नोटिस मिला, एक बुलावा। उन्हें जर्मनी में एक लेबर कैंप में रिपोर्ट करने को कहा गया था।
लेबर कैंप मतलब मजदूर शिविर?
कहने को मजदूर शिविर, लेकिन फ्रैंक परिवार समझ गया था कि यह सिर्फ बहाना है, असल में ये निर्वासन और शायद मौत की तरफ पहला कदम था। ये उनके लिए खतरे की आखिरी घंटी थी।
ओह, तो उन्होंने क्या किया फिर? क्या पहले से कोई प्लान था?
हाँ, ऑटो फ्रैंक ने थोड़ी तैयारी पहले से कर रखी थी। उन्हें अंदाजा था कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। उनका जो ऑफिस था प्रिंसन ग्राख्त 263 पर, उसी बिल्डिंग में पीछे की तरफ एक गुप्त जगह बनवाई थी उन्होंने।
अच्छा।
जी, उसे वो सीक्रेट एनेक्स कहते थे, डच में हेट अख्तर हाउस। जैसे ही मार्गोट का बुलावा आया, उन्होंने फौरन, मतलब जो प्लान था उससे भी पहले, वहां छिप जाने का फैसला कर लिया।
और ये जगह कैसी थी, मतलब छिपी हुई कैसे थी?
ये एक घूमने वाली किताबों की अलमारी के पीछे थी। बाहर से देखें तो पता ही नहीं चलता था कि पीछे कोई और जगह भी है।
कमाल है।
और इस एनेक्स में सिर्फ फ्रैंक परिवार ही था नहीं, वहां कुल 8 लोग रहने वाले थे। फ्रैंक परिवार के 4 लोग ऑटो, एडिथ, मागोट और एनी, फिर ऑटो के एक बिजनेस पार्टनर थे हर्मन वैन पेल्स, उनकी पत्नी ऑगस्टे और उनका बेटा पीटर। डायरी में एनी उन्हें वैनडान परिवार कहती हैं शुरू में।
8 लोग?
हाँ, और कुछ महीने बाद नवंबर 1942 में एक डेंटिस्ट फ्रिट्स फेफर भी आ गए। डायरी में इनका नाम अल्बर्ट डसल है। तो कुल 8 लोग एक बहुत ही कन्फाइंड सी जगह में 2 साल से भी ज्यादा समय तक।
2 साल, 8 लोग एक छोटी सी जगह में, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, ये तो सोच के ही घुटन होती है। कैसी थी वहां की जिंदगी, क्या मुश्किलें थी?
मुश्किलें तो बहुत थीं। सबसे बड़ी मुश्किल तो थी पकड़े जाने का डर, जो हर पल बना रहता था।
हर पल?
हाँ, दिन के वक्त जब नीचे ऑफिस में लोग काम करते थे तो एनेक्स में एकदम सन्नाटा रखना पड़ता था, बिल्कुल चुप, न बोलना, न चलना फिरना, यहाँ तक कि टॉयलेट फ्लश करने की भी इजाज़त नहीं थी।
बाप रे।
जगह बहुत छोटी थी, खाने की कमी होने लगी थी, खासकर जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा। और जाहिर है, जब इतने लोग इतने करीब रहेंगे, तनाव तो होगा ही, आपस में टकराव भी होते थे। एनी का अपनी माँ से, मिसेज वैन पेल से, मिस्टर डसल से अक्सर झगड़ा हो जाता था। वो सब लिखती हैं अपनी डायरी में।
तो ये सिर्फ फिजिकल कैद नहीं थी, मेंटल प्रेशर भी बहुत था।
बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव का माहौल था, हर वक्त डर, घुटन, अनिश्चितता।
ऐसे में बाहरी दुनिया से कोई संपर्क था उनका, कोई मदद कर रहा था?
हाँ, और वो लोग इस कहानी के असली हीरो हैं। ओटो फ्रैंक के कुछ नॉन ज्यूइश सहकर्मी और दोस्त थे मीप गीज, बेब वस्क्विल, योहान्स क्लाइमन, विक्टर कूगलर। इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर,
अपनी जान जोखिम में डालकर?
हाँ, क्योंकि पकड़े जाने पर इन्हें भी सजा मिलती, पर उन्होंने इन 8 लोगों की मदद की। वो उन्हें खाना लाकर देते थे, किताबें, अखबार लाते थे, बाहरी दुनिया की खबरें उन्हीं से मिलती थीं। उनका साहस, उनकी वफादारी कमाल की थी।
और एनी के लिए इन सब मुश्किलों, डर, तनाव के बीच उनकी डायरी किटी की क्या अहमियत थी?
किटी तो जैसे उनकी लाइफलाइन थी। वो अकेली ऐसी जगह थी जहां वो अपना गुस्सा निकाल सकती थी, अपना डर लिख सकती थी, अपने दिल की बात खुलकर कह सकती थी। डायरी लिखना उनके लिए सिर्फ टाइम पास नहीं था,
वो एक तरह का सेफ स्पेस था।
हाँ बिल्कुल, वो उनके मेंटल हेल्थ, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था। वो अपने अंदर के सारे तूफान को कागज पर उतारकर शायद कुछ सुकून पाती थी।
जब छिपाव का दूसरा साल आया 1943-44, तब एनी की डायरी में कुछ बदलाव नजर आता है। मतलब वो सिर्फ रोज की बातें नहीं लिख रही थी।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। हम देखते हैं कि एनी के अंदर एक जबरदस्त बौद्धिक और भावनात्मक विकास हो रहा था। वो सिर्फ 14-15 साल की थी, लेकिन उनका लिखना ज्यादा गहरा, ज्यादा फिलोसॉफिकल हो गया।
फिलोसॉफिकल किस तरह से?
वो युद्ध के बारे में, इंसानियत के बारे में, खुद अपनी पहचान के बारे में सोचने लगी थीं। उन्होंने अपनी 2 एनी के बारे में लिखा, एक बाहरी एनी जो मजाकिया थी, बातूनी थी, और एक आंतरिक एनी जो ज्यादा गंभीर, सेंसिटिव और गहरी सोच वाली थी।
अच्छा, बाहरी और आंतरिक एनी।
जी, और वो चाहती थीं कि लोग उनकी इस आंतरिक असली एनी को समझें। वो इस कश्मकश को अपनी डायरी में लिखती थीं।
और इसी दौरान उनकी जिंदगी में पीटर वैन पेल्स के साथ भी एक रिश्ता बना।
हाँ, शुरू में तो एनी को पीटर थोड़े शर्मीले और उबाऊ लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उस बंद माहौल में उन दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हुई, और फिर
पहला प्यार।
पहला प्यार
जी।
वो अटारी में छुप छुप कर मिलते थे, बातें करते थे। एनी के लिए ये रिश्ता एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट बना। उस घुटन में वो शायद ताजी हवा के झोंके जैसा था, अकेलेपन से लड़ने में मदद मिली।
और फिर एक ऐसा मोमेंट आया जिसने एनी के लिए उनकी डायरी के मायने ही बदल दिए।
जी, 1944 के शुरू में एनी ने रेडियो पर लंदन से एक ब्रॉडकास्ट सुना। डच सरकार के एक निर्वासित मंत्री थे गेरेट बोल्केस्टीन। वो लोगों से अपील कर रहे थे कि युद्ध के दौरान के अपने अनुभव, खास तौर पर डायरी और चिट्ठियां, संभाल कर रखें।
क्यों?
ताकि युद्ध के बाद इतिहास लिखा जा सके, उस दौर का सच सामने आ सके। इस अपील ने एनी को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। उन्हें लगा कि उनकी डायरी सिर्फ उनकी नहीं है, इसका एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व हो सकता है।
तो इसके बाद उन्होंने क्या किया?
उन्होंने अपनी डायरी को दोबारा पढ़ना और एडिट करना शुरू किया। इस इरादे से कि युद्ध खत्म होने पर इसे किताब की शक्ल में छपवाएंगी। उन्होंने उसका टाइटल भी सोच लिया था, हेट आख्तर हाउस यानी द सीक्रेट एनेक्स।
अच्छा।
हाँ, तो अब वो सिर्फ एक टीनेजर की पर्सनल डायरी नहीं रही, वो भविष्य के लिए एक गवाही बनने की तैयारी थी। उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचनी चाहिए।
फिर जून 1944 में डी-डे की खबर आई, मित्र देशों की सेना फ्रांस में उतर गई। इसका एनेक्स में क्या माहौल बना?
डी-डे की खबर जाहिर है उम्मीद लेकर आई। एनेक्स में बंद लोगों को लगा कि बस अब आजादी ज्यादा दूर नहीं, युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। एनी की डायरी में भी ये उम्मीद झलकती है।
लेकिन
किस्मत को कुछ और मंजूर था। उनकी आखिरी डायरी एंट्री 1 अगस्त 1944 की है।
और इसमें वो क्या लिखती हैं?
वो अपने अंदर के विरोधाभासों के बारे में लिखती हैं, अपनी अच्छी और बुरी साइड के बारे में, और वो एक गहरी इच्छा जाहिर करती हैं कि काश वो अपनी असली पहचान, अपनी सच्ची गहरी सोच दुनिया को दिखा पाती, जिसे वो अक्सर छुपा लेती थी। ये उनकी सेल्फ एनालिसिस का पीक था शायद।
और इसके ठीक 3 दिन बाद वो हो गया जिसका डर था।
हाँ, 4 अगस्त 1944 की सुबह किसी ने खबर दे दी। गेस्टापो, जो नाजी जर्मनी की खुफिया पुलिस थी, उसने सीक्रेट एनेक्स पर छापा मार दिया।
ओ नहीं।
एनेक्स में छिपे 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके 2 मददगारों को भी पकड़ लिया गया।
उसके बाद क्या हुआ उन लोगों का?
पहले उन्हें वेस्टरबर्ग ट्रांजिट कैंप ले जाया गया, फिर वहां से ऑशविट्स बिर्केनाउ, जो सबसे बदनाम नाजी डेथ कैंप था। वहां परिवार बिछड़ गया। एनी, मार्गोट और उनकी मां को औरतों वाले सेक्शन में भेजा गया, ओटो फ्रैंक को मर्दों वाले सेक्शन में। बाद में एनी और मार्गोट को जर्मनी के बर्गन बेल्सन कैंप भेज दिया गया। वहां हालात बहुत ही भयानक थे, गंदगी, भूखमरी, बीमारियां। युद्ध खत्म होने से बस कुछ हफ्ते पहले, शायद मार्च 1945 में,
क्या
दोनों बहनों की टाइफस नाम की बीमारी से मौत हो गई। एनी उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी।
सिर्फ 15 साल? उन 8 लोगों में से क्या कोई बच पाया?
सिर्फ एक, एनी के पिता ओटो फ्रैंक। युद्ध खत्म होने पर जब वो ऑशविट्स से आजाद होकर एम्स्टर्डम वापस आए, तो उन्हें पता चला कि उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका है।
ये तो बहुत दुखद है।
हाँ, मीप गीज, उनकी एक मददगार, उन्होंने छापे के बाद एनेक्स से एनी की डायरी और दूसरे कागजात संभाल कर रख लिए थे। उन्होंने वो ऑटो फ्रैंक को दिए। अपनी बेटी की डायरी पढ़ना उनके लिए एक बहुत गहरा अनुभव था। उन्हें एनी की उस सोच, उस गहराई, उस टैलेंट का पता चला जो उन्होंने शायद पहले नहीं जाना था।
और तब उन्होंने इसे छपवाने का फैसला किया।
जी, उन्होंने एनी की आखिरी इच्छा पूरी की और ये डायरी दुनिया भर में पढ़ी गई।
एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई।
हाँ, आज ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। 70 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। एनी फ्रैंक होलोकॉस्ट के लाखों पीड़ितों का चेहरा बन गई, और उनकी कहानी आज भी नफरत, असहिष्णुता और युद्ध की भयानकता के खिलाफ एक पावरफुल मैसेज देती है।
एनी की डायरी सिर्फ घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं है, जैसा आपने कहा
जी,
ये उनके विचारों, उनके वैल्यूज को भी दिखाती है। वो कौन से मूल विश्वास थे जो हमें उनकी डायरी से पता चलते हैं?
सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो है इंसान की रेजिलियंस, मतलब मुश्किल हालात में भी टिके रहने की ताकत और उम्मीद बनाए रखने की क्षमता। इतनी भयानक क्रूरता और निराशा के बीच रहते हुए भी एनी ने कहीं ना कहीं इंसानियत पर अपना भरोसा नहीं खोया।
हाँ, उनका वो मशहूर कोट, इतनी सब बातों के बावजूद मैं अब भी मानती हूँ कि लोग दिल से वाकई अच्छे होते हैं, ये कमाल का है। मतलब कैसे कोई इतने दुख झेलकर भी ऐसा सोच सकता है?
शायद ये भोलापन नहीं था, शायद ये एक सोचा समझा फैसला था, नफरत और निराशा को खुद पर हावी ना होने देने का एक तरीका, एक तरह का अंदरूनी प्रतिरोध। इसके अलावा सेल्फ एक्सप्रेशन यानी खुद को व्यक्त करने की ताकत उनके लिए बहुत जरूरी थी। लिखना उनके लिए सिर्फ डायरी भरना नहीं था, ये अपनी पहचान को, अपनी सोच को, अपनी इंसानियत को जिंदा रखने का जरिया था।
उस माहौल में जान नाजी उनकी पहचान ही मिटा देना चाहते थे।
बिल्कुल, लिखना उनके लिए अपने वजूद को बचाने का एक तरीका था।
और ये भी दिखता है कि उन्होंने अपनी जो जानने की इच्छा थी उसे मरने नहीं दिया, वो पढ़ती रहीं, सीखती रहीं।
हाँ, साधन बहुत कम थे, फिर भी वो लगातार पढ़ती थीं। फ्रेंच सीखी, अंग्रेजी सीखी, इतिहास में दिलचस्पी ली। उन्होंने खुद को बिजी रखा, अपने दिमाग को एक्टिव रखा, और उनमें एक पर्सनल जिम्मेदारी की भावना भी आई।
जैसे?
जैसे उनका ये सोचना कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किसी को एक पर भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये दिखाता है कि वो मानती थीं कि छोटे छोटे एक्शन भी मायने रखते हैं, और जैसा हमने पहले बात की, वो अपनी आंतरिक सच्ची पहचान को समझने और उसे जाहिर करने के लिए लगातार कोशिश करती रहीं। यही उनके लेखन को इतनी गहराई देता है।
अगर हम एनी के जीवन के कुछ टर्निंग पॉइंट्स की बात करें, ऐसे मोड़ जहां उनकी जिंदगी एकदम बदल गई, तो वो कौन से होंगे? पहला तो शायद डायरी का मिलना ही था।
हाँ बिल्कुल, जून 1942 में वो डायरी मिलना, वो सिर्फ एक बर्थडे गिफ्ट नहीं था, वो किटी का मिलना था। एक दोस्त, एक सीक्रेट जगह जहाँ एनी अपने सबसे गहरे डर, अपनी सच्ची फीलिंग्स, अपनी उम्मीदें सब लिख सकती थी बिना किसी डर के।
हाँ,
उस वक्त जब उनकी बाहरी दुनिया बंद हो रही थी, किटी ने उन्हें अपनी अंदर की दुनिया खोलने का जरिया दिया। अगर ये डायरी ना होती तो शायद एनी की कहानी भी उन लाखों अनकही कहानियों में खो जाती। इसी ने उनके अनुभवों को अमर बना दिया।
दूसरा मोड़ कौन सा मानेंगे?
छिपाओं में जाना। हाँ यकीनन, जुलाई 1942 में अचानक सीक्रेट एनेक्स में छिप जाना, ये उनकी जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक झटके में उनका नॉर्मल बचपन खत्म, स्कूल, दोस्त, खुली हवा, यहाँ तक कि उनकी प्यारी बिल्ली मूर्छे भी पीछे छूट गई।
वो सीन जो आपने बताया था, गर्मी में कपड़ों की कई परतें पहन के जाना,
हाँ, ताकि किसी को शक न हो, वो उनके जीवन की दिशा बदलने वाला पल था। इस घटना ने उन्हें एक ऐसी सच्चाई में धकेल दिया जो उनकी उम्र की किसी लड़की के लिए सोचना भी मुश्किल था, और यही सच्चाई उनके लेखन का फोकस बन गई। इसी ने उनके लेखन को वो अर्जेंसी और गहराई दी।
और तीसरा महत्वपूर्ण मोड़, क्या वो रेडियो वाला ब्रॉडकास्ट था?
मेरे ख्याल से हाँ। 1944 में जब एनी ने डच मंत्री गैरेट बॉल्कीस्टीन का वो रेडियो ब्रॉडकास्ट सुना जिसमें डायरियों को सहेजने की बात थी, वो एक डिसाइसिव मोमेंट था।
कैसे?
उसने एनी की पर्सनल डायरी को उनकी अपनी नजरों में एक पोटेंशियल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बना दिया। इसने उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए लिखने का एक मकसद दिया,
एक मकसद,
एक लेखिका बनने की इच्छा दी।
हाँ।
ये विश्वास दिलाया कि उनकी कहानी, उनकी आवाज मायने रखती है, इसे सुना जाना चाहिए। ये सिर्फ निजी दुख का बयान नहीं रहा, ये इतिहास का गवाह बनने की प्रेरणा बन गया।
एनी की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या मानवीय सबक हम इससे ले सकते हैं?
कई सबक हैं। पहला तो यही कि टीनेज के जो यूनिवर्सल स्ट्रगल्स होते हैं, अपनी पहचान खोजना, पेरेंट्स से मतभेद, पहला प्यार, ये सब भयानक हालात में भी जारी रहते हैं।
हाँ, वो भी एक आम टीनेजर थी इन सब मामलों में।
बिल्कुल, एनी की डायरी दिखाती है कि युद्ध और डर के साए में भी वो एक नॉर्मल टीनेजर की तरह सोच रही थीं अपने बारे में, रिश्तों के बारे में, भविष्य के बारे में। ये उनकी इंसानियत का सबूत है।
और ये हमें सहानुभूति सिखाती है ना? जब हम उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, छोटी खुशियां, झगड़े, डर, तो होलोकॉस्ट के वो लाखों पीड़ित सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाते।
सही कहा, हम महसूस करते हैं कि वो सब असली इंसान थे जिनके अपने सपने थे, जिंदगी थी जो उनसे छीन ली गई।
और ये कहानी हमें ये भी बताती है कि अकेलेपन, कैद और लगातार डर का दिमाग पर क्या असर होता है।
जी, 2 साल से ज्यादा एक बंद जगह में रहना, हर आहट पर डर जाना, इसका क्या असर होता है मन पर, ये एनी के लेखन से पता चलता है। और साथ ही ये भी दिखता है कि ऐसे मुश्किल वक्त में इंसानी रिश्ते कितने कीमती हो जाते हैं।
जैसे पीटर के साथ उनका रिश्ता या वो मददगार लोग।
हाँ, उनका निस्वार्थ साहस, ये सब उम्मीद की किरण की तरह थे।
और शायद सबसे बड़ा सबक, आज़ादी की कीमत।
बिल्कुल, बाहर घूमने की आज़ादी, खुलकर बोलने की, अपनी मर्जी से पढ़ने लिखने की, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि ये आज़ादियाँ कितनी कीमती हैं और इन्हें बचाए रखना कितना ज़रूरी है। ये अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की, गवाह बनने की अहमियत पर भी जोर देती है।
तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर हम एनी फ्रैंक की डायरी से 3 सबसे अहम बातें निकालना चाहें, वो कौन सी होंगी जो हमें याद रखनी चाहिए?
ये शायद निराशा के खिलाफ एक सोचा समझा प्रतिरोध था, एक चुनाव। ये हमें सिखाता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद रखना मुमकिन है, और ये अपने आप में इंसानियत की एक जीत है।
आशा की शक्ति।
दूसरा, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, ये है एक अकेली कहानी का ऐतिहासिक महत्व। एनी की पर्सनल डायरी हमें हॉलोकॉस्ट की मानवीय त्रासदी को शायद किसी भी इतिहास की किताब से ज्यादा गहराई से महसूस कराती है। ये दिखाती है कि कैसे एक अकेली आवाज, एक युवा लड़की की आत्मा में कितना कुछ चल सकता है, इतिहास को एक इंसानी चेहरा दे सकती है। और ये भी कि बाहरी हालात कितने भी बुरे हों, इंसान का अंदरूनी विकास, सोचने का, महसूस करने का नैतिक विकास, वो जारी रह सकता है।
एक अकेली आवाज का महत्व
जी। और तीसरा, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, ये है खुद को अभिव्यक्त करने और अपने आंतरिक जीवन का महत्व। जब बाहर की दुनिया की आज़ादी छिन जाती है, तब लिखना जैसी क्रिएटिव चीज़ें, अपने अंदर की दुनिया से जुड़ना, ये हमारी पहचान, हमारे मानसिक संतुलन, हमारी इंसानियत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एनी की डायरी उनका वो सेफ कॉर्नर थी,
अपना सेफ स्पेस।
हाँ, और साथ ही ये आइडिया कि हमारे छोटे छोटे काम भी मायने रखते हैं। उनका वो सोचना कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि हम सब, चाहे जैसे भी हालात में हो, कुछ अच्छा करने की, बदलाव लाने की ताकत रखते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।